सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। ये महामंत्र हमको शांति की ऊंचाई और गहराई दोनों के लिए अनुभूति के सागर में डुबो देता है। तो ओम शांति मौन की एक चाबी है। जैसे एक सरिता को बहते हुए हम देखते हैं कि उसके दो किनारे होते हैं, उन दो किनारों के बीच में सरिता बहती है और उस सरिता के शीतल जल से सभी पलते हैं, बड़े होते हैं, अन्न और धन की प्राप्ति करते हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में श्रीमत और श्रीमत के साथ दिनचर्या, ये दो ऐसे किनारे और सहारे हैं जो प्यारे बाबा इस सीजन की प्रथम मुरली में हम सभी ब्रह्मावत्सों का ध्यान केंद्रित किया कि मुख का मौन और मन का डांस, इसी का नाम है ब्राह्मण जीवन। मुख हमारा शांत रहे, बोलों से मुक्त रहे और मन इस ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता में, प्रभु प्यार में, प्रभु प्राप्तियों में, आत्मिक खुशी में, आंतरिक खुशी में नाचता रहे। याद है ना, इस सीजन की पहली मुरली यही थी ना। अभ्यास भी हम सब कर रहे हैं क्योंकि बाबा के स्वीट बच्चे हैं, नियमित बाबा की पढ़ाई का अध्ययन करते हैं तो होमवर्क भी करते हैं। तो बाबा ने कहा है और हम सबको करना है। जब करते हैं तो अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव कहता है कि प्यारे बाबा ने आज्ञा दी मुख का मौन मन की डांस। जिनका बहुत लंबे समय से अटेंशन और अभ्यास था, वो तो अपने आप को इस आज्ञा में, होमवर्क में जैसे पास महसूस कर रहे हैं। जिनका अभ्यास और अटेंशन इतना नहीं था, तो जैसे एकदम बहुत बड़ा होमवर्क जैसे मिल गया। लेकिन हम सबको याद रहे कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, परम शिक्षक के विद्यार्थी हैं, तो मुश्किल, असंभव और कठिन ये शब्द हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी का नहीं है, क्योंकि हम सब ने बाबा का बनते ही कौन सा गीत गाया, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान, अर्थात असंभव कुछ भी नहीं है। तो चिंतन करते हैं, अपनी ब्राह्मण लाइफ को देखते हैं, तो एहसास होता है कि प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत पालन करने के लिए दिनचर्या प्रदान की है, उस दिनचर्या को यदि हम मधुबन के प्रमाण रखते हैं तो बहुत सहज है मौन और मन का डांस। बाबा परसों भी जब हमसे मिले तो भी बाबा ने अव्यक्त स्थिति की बात कही। तो ये मौन और मन का डांस ही हमें अव्यक्त स्थिति बनाने में भी सहयोगी बनेगा। तो चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, बाल्यकाल जो ज्ञान का हम सब का है वो याद आने लगा, और जब उसको याद करते हैं तो हर ब्रह्मावत्स खुश हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि बाबा के घर जब हम सब आए तो जो हमें निमित्त आत्माओं के द्वारा आज्ञा मिलती थी उसमें हमारा बुद्धि का लॉजिक नहीं चलता था, बल्कि सहज हम उसे स्वीकार कर लेते थे, और स्वीकार करते हुए उसका आनंद और अनुभव प्राप्त करते थे। ठीक वैसे ही बेहद यज्ञ में, बेहद घर में, जब बाबा के घर मधुबन में हम आते हैं तो चाहे अमृत वेले 2 बजे जगना है, चाहे 3:30 जगना है, और चाहे 4 बजे जगना है, वो हमें क्या लगता है, सहज लगता है, अनुभूति वाला लगता है, खुशी वाला लगता है, लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला लगता है, क्योंकि बुद्धि में स्मृति रहती है प्यारे बाबा मुझसे खास मिलने आ रहे हैं। ये स्मृति, हम कितने भी व्यस्त रहें और कहां भी रहें, कितने बड़े संगठन में रहें, लेकिन बाबा की तरफ और बाबा की आज्ञा की तरफ हमें, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे आनंद सरोवर में हो, चाहे शांतिवन में हो, अमृत वेले का आनंद, अनुभव, सुख लेने के लिए हमें एकत्रित कर देती है। और ये कहा जाता है हिम्मत का एक कदम तो लाख कदम, पदम कदम बाबा के हम बच्चों को मिलते हैं। और अमृत वेले का योग जो हमें अपने कार्य क्षेत्र पर बड़ा मुश्किल लगता है, वो इस पावन भूमि पर पांव रखते ही क्या हो जाता, सहज हो जाता। आलस्य और सुस्ती दोनों गायब हो जाती और खुशी मन के अंदर भर जाती। जब प्यारी बाबा की आज्ञा को हम पालन करते हैं तो मन खुशियों में नाचने लगता है, और जहां खुशी है वहां प्राप्ति है, और उस मन, खुशियों से भरा हुआ मन कुछ ना कुछ रचनात्मक सोचने लगता है, और वो रचनात्मक सोच हम सबको प्यारे बाबा ने दिया कि अमृत वेले ही आप स्वमान ले लीजिए, और वो एक स्वमान आपको दिन भर क्या रखेगा, शक्तिशाली बना देगा। प्रातः अमृत वेले जगते ही कहते हैं, किसको देखा हमने, किसके साथ बैठे हम, किसका अनुभव किया, क्या प्राप्त किया, तो उत्तर स्वतः ही मन से आता है कि मैं स्वयं अपने प्राण आधार निष्काम सेवाधारी सदा का शुभ चिंतक जन्म जन्मांतर का मेरा सच्चा हितेशी उस प्रभु के सन्मुख प्रभु आज्ञा पर मैं आत्मा उपस्थित थी। और वो स्मृति वो प्राप्ति उसकी अमृत वेले को बहुत कुछ वर्षों पहले प्यारे बाबा ने कहा था कि अमृत वेले का सिर्फ योग नहीं बल्कि अनुभूति वाला योग हो, तो वो प्राते ही हमें इतना चार्जर मिल जाता है जो दिन भर का कार्यकलाप दिन भर की विभिन्नताओं की वैरायटी हमें एक पिता के सहारे में एक पिता के प्यार में और एक पिता की शक्तियों से भरपूर कर देती है। हम प्यारे बाबा के इस बेहद यज्ञ में आए हैं, बाबा ने स्वयं हमसे मुलाकात की है ब्रह्मावत्सों से, तो हम ये ब्रह्मा मुहूर्त की ब्रह्मलोकवासी प्यारे बाबा की इस मुलाकात को चिर अविनाशी बना लें कि मेरा प्रभु मेरे सन्मुख है और मैं उससे जन्म जन्मांतर की झोली भर रही हूं। ये स्वमान हमें दिन भर अनेक विकल्पों से अनेक व्यर्थ से अनेक अलबेलेपन से मुक्त कर देता है। और फिर होता है हमारी पढ़ाई दिनचर्या। हम ब्राह्मणों की सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त का योग और दूसरा नंबर है भले आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमें घर घर में मुरली मिल रही है, लेकिन प्यारे बाबा ने ये जो सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं या मुरली का जहां एकत्रित होकर अध्ययन मनन नियमित होता है वो तीर्थ स्थान होता है, और उस तीर्थ स्थान पर जब हम चलकर आत्मिक ऊर्जा को पढ़ने के लिए आत्मिक ऊर्जा को भरने के लिए एकत्रित होते हैं तो बाबा की मदद तो हमको मिलती ही है, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं का ब्राह्मणों का संग भी मिलता है। पीएमटीवी तो हमारा सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मुरली का अध्ययन मनन हम सेवा केंद्र उपकेंद्र और स्थान जो हमारे यज्ञ स्थल बने हुए हैं प्यारे बाबा की आज्ञा पर वहां जाकर जब हम सुनते हैं संगठित भाव में बैठकर सुनते हैं तो वो शिक्षा वो आज्ञा हमारा स्वरूप बन जाती है। हमारी निमित्त आत्माओं के द्वारा जो हमारी दैवी बहने हैं वो उस ज्ञान का उस मुरली का मनन अध्ययन करके जब हमको प्यारे बाबा की मुरली को लोरी के रूप में देती हैं, श्रृंगार के रूप में देती हैं, वरदान के रूप में देती हैं, आत्मा के भोजन के रूप में हमें अनुभूति में ढाल कर देती हैं, तो वो मुरली हमारी जीवन की विषमताओं का विकल्पों का अनेक मुश्किलों का एक जैसे चप्पू बन जाता है सहारा बन जाता है। और वो मुरली दिन भर में आने वाली बातों के लिए हमें एक दर्पण होती है। आज चलते चलते कई बार ऐसा देखने सोचने में आता है कि हम ये सोच लेते हैं कि मुरली पढ़ लेंगे कई साधनों के माध्यम से पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम घर से बाबा के यज्ञ स्थल पर सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुनते हैं तो उससे हमारी मानसिक अलर्टनेस, हमारी शारीरिक व्यायाम, स्फूर्ति दोनों ही इसमें जुड़ जाती हैं। और उस प्रक्रिया से जब हम जाकर मुरली को सुनते हैं तो वो मुरली हमारे लिए औषधि का कार्य करती है। और वो मुरली का मनन चिंतन आज बाबा ने कहा, जैसे आज ही हम बाबा के महावाक्य सुन रहे थे तो क्या था, पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद ये नबाबी हमें समझ में आई कि ये नबाबी कौन सी है। जो मन का राजा है वो सारे विश्व का राजा है, और मुरली हमको मन का राजा बनना सिखाती है। तो वो सच्ची नबाबी है स्वराज्य अधिकार की, वो सच्ची नबाबी है मन के डांस की, और वो सच्ची नबाबी है मन के मौन की। तो वो तभी होगा जब हम विधिवत परम शिक्षक के प्रांगण में उपस्थित होकर, जैसे हम बाबा के सन्मुख यहाँ बैठकर कितनी तल्लीनता से, लगन से, इतने विशाल हॉल को भी सब क्या करते हैं मुरली सुनने के लिए, छोटा कर देते हैं। जैसे चिड़ियों ने सागर को हप किया, ऐसे हम बाबा के ज्ञानी योगी आत्माएं इस विशाल डायमंड हॉल को अपनी लगन और धुन से क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम मुरली के प्रति, आपने सुना होगा ब्रज क्षेत्र में मुरली जब बजती थी कान्हा की, तो गोपी तन मन की सुध भूल जाती थी। तन मन की सुध माना तन के रोग भूल जाएं, मन के अनेक विकल्प छूट जाएं, और मुरली के समय पर मुरली क्लास में पहुंच जाएं। वो है कृष्ण की मुरली नहीं, बांस की मुरली नहीं, पर ज्ञान सागर के ज्ञान योग धारणा सेवा की जो शक्ति ऊर्जा हमें देने वाली है, जो प्रेरणा हमें देने वाली है, जो कल्प कल्पांतर की अविनाशी कमाई कराने वाली है, उस मुरली के प्रति उतना ही तन्मयता, उतनी ही लगन, उतनी ही एक्यूरेसी कि अगर मेरा एक पॉइंट आज छूट गया तो कल्प कल्प भी वो पॉइंट मुझको मिलने वाला नहीं है। हम सब जान चुके हैं ना। अब जो हमें बाबा ने ये कहा है वो सिर्फ स्वरूप में लाने के लिए कहा है कि जो जाना है उसे मुझे ही करना है। और आप सब घर परिवार में रहते हैं, जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, वो इन सब बातों को हमारा निरीक्षण करते रहते हैं कि आज इनकी दिनचर्या कैसी रही। यदि दिनचर्या हमारी लंबे समय तक जो हम बाबा की आज्ञाएं शिक्षाएं सुनाते हैं उनको हम स्वयं पालन करते हैं, तो उन लोगों की सेवा मौन में भी बिना कुछ कहे भी हो जाती है। हमारा प्रभु प्यार, हमारी प्रभु चलन, हमारे बाबा ने मुरली के माध्यम से ही हमें बताया है कि क्या सोचना है, बताया है ना, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है और कैसे चलना है। ये मुख्य कर्मेंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखने के लिए मुरली हमें स्टेप बाय स्टेप सारा समझाती है। सोचो तो शुभ भाव से सोचो, सद्भाव से सोचो, सारी वसुधा अपना परिवार है, प्यारे बाबा के सब बच्चे हैं, मैं भी इस परिवार की एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये सोचने का भाव हमारी नजर को क्या करेगा, स्नेहमयी बना देगा। जो आज प्यारे बाबा पढ़ाई की बात दैवी गुण की धारणा बता रहे थे, वो उनके नैनों में रूहानियत, अपनत्व और शीतलता, तीनों चीजें वसुधा परिवार को सोचने से, अपने पिता की संतान सोचने से आ जाती है। ऐसा ही है ना, कहीं भी कई भाई बहन बैच लगा हुआ दिख जाता है तो मन क्या हो जाता है, अपरिचित होते हुए भी, स्थूल परिचय नहीं है, लेकिन बाबा का बैच लगा है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान की, योग की, धारणा की, ओम शांति की सारी एकता हमें नजर आ जाती है। मन में कुछ बिना कहे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये है बाबा की मुरली के द्वारा जो हमें सोच मिला और जो हमने नेत्रों से देखा, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में स्वतः ही आने लगता है। हुआ ना ऐसे, जब अपने अपने स्थानों से हम मधुबन पहुंचे, कोई भी भाई बहन स्टेशन पे मिल जाए, कहां भी मिल जाए, तो क्या करते हैं, मुस्कान दे देते हैं, मौन में ही मुस्कान आ जाती है। तो इस प्रकार से ये विचारों की एकता, ये व्यवहार की एकता, ये सद्गुणों के विकास की एकता हमें प्रसन्नता प्रदान कर देती है। इसलिए संगठित होकर जब हम ज्ञान को करते हैं, मुरली को सुनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारी दिन की दिनचर्या पर लंबे समय तक रहता है। अर्थात जब हम बाबा के महावाक्य सुनकर कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, बाबा ने तो हमें कर्म योगी बनाया है सबको, ऐसा तो नहीं है कि बस हम सत्संगी करते रहें, मुरली ही सुनते रहें। लेकिन मुरली को सुनने के बाद जब हम कार्यक्षेत्र पर जाएं, कर्मस्थल पर जाएं, तो वहां पर भी हम कुछ पॉइंट जो बाबा ने आज जैसे कहे, पढ़ाई के ऊपर कहे, दिव्य गुणों के ऊपर कहे, राजाई के ऊपर कहे, कमाई के लिए कहे, तो उनको हम अपनी बुद्धि में सेट कर लें। और कुछ वर्ष पूर्व बाबा ने हम सबको एक घंटे में एक मिनट के लिए साइलेंस की बात कही थी। कोई जल पीता है अपने कार्यक्षेत्र पर, कोई दूसरा अपनी जो आदत होती है उसका प्रयोग करता है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ की स्वरूप की स्थिति के अनुकूल, प्यारे बाबा ने तो एक घंटे में एक मिनट के मौन की आज्ञा दी है, लेकिन यदि मैं पुरुषार्थी होने के नाते अनुभव करती हूँ कि मुझे आधे घंटे में भी एक मिनट अगर निकाल लेती हूँ, और मैं अपने को चेक करती हूँ कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, जो प्यारे बाबा ने कहा है उसके अनुकूल मेरा मन चल रहा है, या कहीं और जा रहा है, जो मैंने संकल्प आज के महावाक्यों को मनन चिंतन करते हुए कर्मेंद्रियों से कार्य करने का लिया है उसकी अलग दिशा में जा रहा है, तो मैं अपने आप को एक घंटे में एक मिनट के साथ साथ उसको अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकता हूँ, अपने व्यस्तता के अनुरूप उसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है, और मेरी बीमारी का, मेरे नियंत्रण का, मेरे विकास का ज्ञान मुझे स्वयं है, कि जिस रूपरेखा में बाबा कह रहे हैं वो मेरा मन उसके अनुरूप कहाँ चल रहा है। यदि आवश्यकता है तो मैं उसको और बढ़ा भी सकता हूँ, अध्ययन को बढ़ा सकता हूँ, मनन को बढ़ा सकता हूँ, और उसकी अनुभूति को करने के लिए मैं अपने आप को तत्पर कर सकता हूँ। तो पता चलता है उसको करने से कि एक मिनट की साइलेंस में विज्ञान ने भी जो मुझे बताया, प्यारे बाबा ने भी जो मुझे बताया, वो मेरा मन कितने विचारों की उत्पत्ति कर रहा है। जाना था मुझे अपने आत्म स्वरूप की स्थिति में, केंद्रित होना था मुझे भ्रकुटी के बीच में, और मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ भाग रही है। मन और बुद्धि उस विचार में ही, उस स्वरूप में ही जब स्थित होता है, तो इंद्रियों को कर्म कराने के लिए, बाबा की शिक्षा की पालना कराने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि मन सहज ही
कर्म इंद्रियों से उस कार्य को करा लेता है। बाबा की मुरली हमें बताती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि हम अपने को चैतन्य सोचें, हम अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण लाइफ का सोचें, तो इंद्रियां स्वतः ही श्रीमत के प्रमाण कार्य करती रहेंगी। और जब मन हम शांत होगा, शक्तिशाली होगा, प्रसन्न होगा, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जब हमें बैठकर कोई प्रायश्चित करना पड़े अथवा बाबा से योग करने बैठे तो एक शिकायत हो कि योग नहीं लग रहा। आप देखते हैं कोई दीपक उसमें पानी भरा है और आप दीपक को जगाने की कोशिश करें तो क्या जल सकता है? माताएं, नहीं जलेगा। और हंसेंगे क्योंकि दीपक की रोशनी पाने के लिए क्या करना है, उसमें कुछ चिकनाई को डालना है, चाहे वो घृत हो, चाहे वो तेल हो और चाहे वो अन्य हो। तो बाबा की याद में, रस में, अनुभव में ब्राह्मण लाइफ को ले जाने के लिए, हमें अनुभूति करने के लिए मनन, चिंतन, श्रीमत का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तभी हम अपने मन को प्रकाशवान बना सकते हैं, तभी हम अपनी इंद्रियों को श्रीमत के प्रमाण चला सकते हैं। कई बार बाबा की मुरली में आता है, आप सबने सुना होगा कि देवताई चलन चलनी है। अब देवताई चलन क्या है? मन की शीतलता, मन की आत्मिक स्मृति का सोच हमारे पांव की चलन को कैसा बना देता है? कैसा बना देता है? धीमे धीमे चलना सिखा देता है। योग में से उठ के चलते हैं तो कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा, मन, बुद्धि सब क्या हो गए? शक्तिशाली होने के कारण शांत हो गए। और वह शक्तिशाली शांति किसी नवीनता का, किसी खोज का, तो किसी नई प्राप्ति का मार्ग खोलती है। तो ऐसे हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कुछ पल ऐसे अवश्य निकालें जो सिर्फ मुझे अपने आप को देखना है और अपने बाबा को अपने सन्मुख रखना है। जिससे भी प्यार होता है तो प्यार वाला सदा क्या मन होता है? सामने रहे। जिससे मेरा प्यार है वो मेरे सामने रहे और मैं उसके सामने रहूं। तो ब्राह्मण जीवन में सबका प्यारा कौन? कौन कौन? एक मेरा बाबा। अब सामने कौन है बुद्धि के? एक मेरा बाबा। बाबा ने कहा ना, सब जगह क्या दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ। दीवारों पे भी लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा। इसका हम अभ्यास करें, इससे पावन स्थल कोई और नहीं हो सकता। हम आत्मा के मन में, हम ब्राह्मण जीवन के मन में बाबा का ये सुंदर घर, बाबा का ये सुंदर परिवार, बाबा का ये सुंदर ज्ञान, बाबा के ये सुंदर योगी बच्चे, सब में क्या है? बाबा। तो ये सोच हमारे मन को क्या बना देता है? बाबा मैं बना देता है। और जब मन का सोच बाबा में है तो आंखों से क्या दिखाई देगा? बोलो, बाबा दिखाई देगा। सुना है ना कि एक माँ का बच्चा बिना भोजन के गया तो माँ ने सोचा बालक का भोजन स्कूल में भेज दूं, तो कोई दूसरी माँ स्कूल में अपना टिफिन लेके जाती है तो उसे कहती है मेरे बच्चे का भी ले जाना। तो वो माँ पूछती है आपका बच्चा कैसा है? कि जो सबसे सुंदर हो ना, बस वही मेरा बच्चा है। तो जो माँ टिफिन लेके जा रही थी उसे सबसे सुंदर कौन सा बच्चा लगा? कौन सा बच्चा लगा? अपना बच्चा लगा। वो दोनों टिफिन किसे दिया ही? तो सबसे सुंदर कौन है हम ब्राह्मणों के लिए? बोलो कौन है? सबसे प्यारा कौन है? किसी का किसी से प्यार हो तो कह नहीं सकते सामूहिक, लेकिन हमारा प्यारा परम पवित्र है, हमारा बाबा सर्वश्रेष्ठ है और हम बाबा के परम पवित्र आशिक हैं। है? बजाओ, अपने लिए बजाओ कि हम परम पवित्र प्यारे बाबा के पवित्र बनने वाले सदा के आशिक हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा को कोई कह सकता है कि मैं भूलता हूं? ऐसे प्यारे बाबा को कोई कह सकता है कि मैं उसके सन्मुख खड़े होने में मुझे कोई दिक्कत है? बाबा कहते चलते फिरते खाते पढ़ते लिखते बाइक चलाते ट्रैवलिंग करते क्या करो? मुझे याद करो। याद माना? जो आज प्यारे बाबा ने मुरली में बताया, जो आज प्यारे बाबा ने मुरली में प्रातः काल सुनाया, उसको मैंने अपनी मन के कागज पे लिखा हुआ है। ज्यादा नहीं, तीन ही विचार लिख लिए, और वो तीन विचार मुझे दिन भर में क्या करते हैं? तरोताजा करते हैं। कैसे तरोताजा करते हैं? आज बाबा ने मुझसे कहा। किससे कहा? आज बाबा के 10 लाख 15 लाख बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा क्या कहता है? मुझसे कहा। यही प्रेम की भाषा है, आज बाबा ने मुझसे कहा। और वो प्रेम हमें सहज करा लेता है, और उस करने से हम दिव्य गुणों की धारणा कर देते हैं। पता भी नहीं चलता कब आ गए वो दिव्य गुण। मधुर मुरली हमारे अंदर जीवन में मधुरता को, ज्ञान को, जो आध्यात्मिक ज्ञान इतना गूढ़ था, जो प्रभु मिलन मानव जीवन के लिए इतना कठिन था, वो हम ब्राह्मणों के लिए क्या हो गया? अपना हो गया, खेल हो गया, एंजॉय हो गया। अकेले मौन में बैठे हैं, कोई सामने नहीं, और हमारी वार्ता पूरे कल्प की चल रही है। हम सतयुग में क्या थे? क्या थे हम सतयुग में? लक्ष्मी नारायण, सूर्यवंशी, अपने से स्वतः उत्तर आ रहा है। चारों युगों का चिंतन, अकेले बैठे हैं, चारों युगों का चिंतन, अकेले बैठे हैं, सारे स्वरूपों का दर्शन, अकेले बैठे हैं। विश्व में इतनी समस्याएं, तनाव, दुख और अशांति और परेशानी, और मेरे बाबा की मुरली, मेरे बाबा का प्यार, मेरे बाबा की आज्ञा का कणभर पालन, मेरी पद्मों की कमाई अकेले बैठे हैं करा रहा है। गीत सुन रहे थे ना, अभी सुना था ना गीत, मौन की भाषा जो समझे। ये मौन, ये प्रभु प्यार, वो शक्ति है जो हमें पत्थर को पारस बना दिया। हर कर्म हमारा कैसा हो जाता? गीता को पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, योगा कर्मेशु कौशलम, लेकिन ना योग लगता था, ना कर्मों की एक्सीलेंसी आती थी, ना कर्मों में दक्षता आती थी, न श्रेष्ठता थी, न कुशलता थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन बाबा का प्यार, हर बाबा के बच्चे को, बाबा ने बताया ना, मेरा बच्चा विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी से भी बड़ा है। ये स्वमान, ये स्वचिंतन हमें क्या करता है? खुशी देता है। जिसे हम कहते थे सिमर सिमर सुख पाओ, पर क्या सिमरें ये नहीं पता था, लेकिन बाबा ने हमें आकर सिमरना भी सिखाया। सिमरन क्या करना है? मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये सिमरन है, ये डांस है, ये म्यूजिक है हमारा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। इसमें क्या है, इसको सोचने से ही तन मन दोनों हल्के हो जाते और हल्कापन ही नवीनता को खोजता है। रोज रोज हमें वही दाल रोटी मिले तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। लेकिन नया नया मिले, आज बाबा ने कितनी सुंदर और नई पॉइंट दी कि साकार सृष्टि के सुप्रीम कौन है, लक्ष्मी और नारायण। वही बाबा है और वही मैं बच्चा हूं, वही बाबा शिक्षक है, वही बाबा का मैं विद्यार्थी हूं। लेकिन रोज उसी मुरली को, रोज उसी शिक्षा को, रोज उसी आज्ञा को, मुझ आत्मा की विभिन्न परिस्थितियों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए उसी बात को बाबा नए तरीके से देता है। मुझे देवताई चलन मेरी बनानी है तो मेरा बाबा मुझे नए ढंग से, नई वोकैबुलरी से उस भाव भाषा को मुझे देता है। कितना शुभ चिंतक है ये। जब हम चिंतन करते हैं तो मन प्यार से उमड़ने लगता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग जाता है। बल्कि कई बार तो जो हमारी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हैं उनसे जब अनुभव शेयर करते हैं तो कहते हैं योग तोड़े कैसे, वो कोई विधि हो तो बताओ। ऐसा हमारा अविनाशी बाबा के साथ और बाबा का हमारे साथ संबंध है। कितना हजारों वर्ष गया लेकिन अनुभूति का रस तो संबंध में अभी मिल रहा है कि बाबा मेरा पेरेंट्स बनके मुझे कैसे गाइड करता है। पेरेंट्स बच्चे को आने वाली घटना से पहले ही अवगत करा देते हैं, बच्चे देखो थोड़ा संभल के जाना उस चौराहे से, उस गली से, उस मोहल्ले से। ऐसे बाबा, माया आएगी घड़ी घड़ी भुलाएगी, बात में भी लाएगी, कोई मित्र संबंधी रिश्तेदार आ जाएंगे और तुमने जो अमृत वेले स्वमान लिया, तुमने जो मुरली क्लास में बाबा की मुरली पढ़ते सुनते समय हृदयंगम करके जो आपने विचार सोचा करने का, वो आएंगे मित्र संबंधी और भूल जाओगे आप, ध्यान रखना। बताते हैं ना बाबा, आप संकल्प कर रहे हो माया भी सुन रही है, लेकिन आप जब वो आए माया तो क्या करना। ये भी बाबा हमें परीक्षा आने से पहले वो बात, प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पर करना तो हमें पड़ेगा ना, करना तो हमें पड़ेगा ना। जब हम उसको करते हैं तो उसके करने से हमारी शक्ति बन जाती है, जिसे कहते हैं कर्म ही पूजा है। जब हम बाबा की श्रीमत के प्रमाण अपने कर्म क्षेत्र में कर्म को करते हैं तभी हम पूजनीय बनते हैं। तभी लोग हमें कार्य क्षेत्र में कहते हैं ये तो इनसे हटके, इनके चेहरे से अलग शांति प्रकट हो रही है, इनके बोलने का लहजा अलग है, इनकी सहयोग की तरीका अलग है, जो सबसे हटके है। ये तो कुछ सृष्टि पर अवतरित जैसे लगते हैं, और वो किसी दिन अपने कार्यक्षेत्र पर ना पहुंचे तो लोग ये सोचते आज क्यों नहीं आए, वो चिंता करते हैं। ऐसा बाबा ने अपना प्यार, अपनी शक्ति हम बच्चों में भर के सृष्टि का भी प्यारा बना दिया है। अनुभव करते हो नहीं करते हो आप सब ऐसा, बोलो। माताएं क्या कहती हैं, घर घर को स्वर्ग बनाया, जहां भी जाते हैं वहां क्या लगता है कि ये कुछ अलग है। अलग माना इनके विचारों से इनके चारों तरफ एक शांति का ओरा है, अपनत्व लगता है, इनसे कुछ अपनी बात को शेयर करें, कुछ इनसे मार्गदर्शन लें। ये है हमारी श्रीमत की पालना से कर्म की पूजा। और वो कर्म हमको जब सायंकाल होता है तो क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत है दिनचर्या के प्रमाण कि हमें नुमा शाम का योग क्या करना है, प्रतिदिन करना है। शहरों के मुताबिक, कार्य क्षेत्र के मुताबिक जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें हम मधुबन की भांति 6:30 से 7:30 यदि योग करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई बड़े शहरों में ट्रैवलिंग में ही लंबा समय हो जाता है, तो वो अपने मुताबिक उसको सेट करें। लेकिन नुमा शाम का योग अपनी ब्राह्मण जीवन में एक घंटा आधा घंटा हम अवश्य करें, उसे कंपलसरी कोर्स समझें। तो वो योग हमें जैसे एक समराइज करता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मुरली क्लास से लेकर दिन भर के कर्म इंद्रियों से किए हुए क्रियाकलाप को श्रीमत प्रमाण लेकर जो सायंकाल आता है, जिसे कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में कि वो है देवताओं के भ्रमण का समय। तो देवता तो सारे यहीं बैठे हैं ना, यहीं बैठे हैं ना सारे देवता। तो वो देवताओं का भ्रमण कौन सा? वो पांव से भ्रमण नहीं, बल्कि जब हम बाबा के साथ योग करते हैं तो हम अपने पवित्र प्रकंपनों को सृष्टि पर प्रवाहित करते हैं, फैलाते हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए। बाबा के साथ संबंध जुटते ही वो सकारात्मक ऊर्जा आपके माध्यम से आपके वातावरण में, आपके परिवार में, आप जहां भी हैं वो फैलने लगती है। और जब वो ऊर्जा फैलती है तो उसकी इंतजार सबको होती है, भले वो अनुभव नहीं करते लेकिन अच्छा लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप भगत लोग, व्यापारी लोग, व्यवहारी लोग सायंकाल दीप प्रज्वलन करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट उजाला करते तो भी हाथ जोड़ते, नतमस्तक होते हैं। वो आपका ही यादगार है, वो बाबा की श्रीमत को हम बच्चों ने जो पालन किया वही आज तक भी चला आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सायंकाल नुमा शाम के योग को भी उतना ही महत्व दें जितना हम दिन भर की अन्य बातों को दे रहे हैं। उससे आप देखेंगे कि जब हमने कुछ वर्षों पूर्व बाबा की आज्ञा सुनी थी कि जब सोने जाएं, तो सोने से पहले भी बाबा ने कहा था कि आपको विशेष बाबा की याद में रहना है। उससे क्या होगा, उस विशेष याद की आज्ञा पालन से हमारा अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त का जो चक्र चलने वाला है, ये दिनचर्या क्या है, दिन और रात, रात के बाद फिर दिन, साइकिल है ये 24 आवर्स का। तो जितना हमारा दिन भर की शक्तिशाली श्रीमत की पालना, कार्य व्यवहार का सकारात्मकता होगी, उतना हम क्या करेंगे कि रात्रि को बाइंड अप करके बाबा को अर्पित करेंगे। बाबा, आपने ही सारा कुछ दिया और मुझ आपके बच्चे ने आपसे ये सब प्राप्त आज दिन भर में किया। अनेक बैरियर आए, अनेक विकल्प आए, अनेक परिस्थितियां आई, अनेक कठिनाइयां आई, अनेक असंभव आए, अनेक संस्कार स्वभाव के चुनौतियां आई, लेकिन आपकी आज्ञा ने, आपकी सर्च लाइट ने, आपके दिए हुए मार्गदर्शन ने मैंने दिन भर क्या किया, उनमें मैं सेफ रही आत्मा, उनको मैंने पालन कर लिया जो मैंने संकल्प और वायदे आपसे किए थे आज। तो क्या होगा, आपको मन कैसा होगा? खुश होगा, शक्तिशाली होगा और अपने आप को भाग्यशाली मानने वाला होगा कि मैं बाबा का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा हूं। ऐसी स्थिति में जब हम बाबा को कॉम्बाइंड लेकर सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जगेंगे? और लंबे समय तक, अगर एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष हमने इस प्रकार से अपने मन को मेंटेन करने के लिए, अपनी ब्राह्मण लाइफ को मेंटेन करने के लिए अटेंशन दिया और अभ्यास किया, तो कितना सुखद और कितना श्रेष्ठ हमारा ये जीवन बन जाएगा। आप और हम सब प्यारे बाबा से मिले, अपने अपने स्थानों से, अपने अपने परिवारों से सहयोग लेकर के हम सब यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ आने पर हम एक ऐसा संकल्प लेकर जाएं। बहुत सारे संकल्प आपने लिए होंगे जिस दिन से बाबा के घर में यहाँ आए हैं, लेकिन एक संकल्प हम ये भी लेकर जाएं कि हम अपनी इस ब्राह्मण लाइफ की दिनचर्या को, अलौकिकता को जहां तक हो वहां तक एक रस बनाने का प्रयास करेंगे। तो लंबे समय की अस्त व्यस्त स्थिति, हमारी बहुत सारी व्यस्तताएं कार्यक्षेत्रों में होती है, संबंधों में होती है, लेकिन वो संकल्प हमें वहां मदद करेगा। और एक बार जब हमारा सिस्टम, सॉफ्टवेयर माइंड का तैयार हो जाएगा, तो फिर हम सहज ही जो हमारी इस पढ़ाई का ध्येय है, ज्ञानी और योगी बनना, देवता बनना, उसको बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।